ओम शांति। एक सूफी महिला एक ऐसे फल की तलाश में थी जिसे स्वर्ग का फल द फ्रूट ऑफ हेवन कहा जाता था। ऐसे एक पेड़ की तलाश में थी जहां वो फल उगता है। और सूफी कहानी कहती है कि वो महिला बहुत ढूंढती है उस फल को, पर मिल नहीं सकता। और अंततः एक दरवेश के पास पहुंचती है जो कि एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, और उससे पूछती है ऐसा ऐसा फल है कहां मिलेगा। और वो दरवेश उसको कहता है कि वो फल यहीं पर मिलेगा और शायद इसी वृक्ष पर। पर वो वृक्ष की ओर देखती है और उसे वो साधारण सा मालूम पड़ता है और वो नहीं रुकती और ढूंढने निकल पड़ती है। और इस यात्रा में वो कभी फकीर से मिलती है तो कभी पीर से मिलती है, कभी आलिम अर्थात सूफियों में जो वैद्य होते हैं उनसे मिलती है, कभी हकीम से मिलती है। इस तरह 30 साल गुजर जाते हैं और वो उस फल को ढूंढती रहती है, परंतु वो द फ्रूट ऑफ हेवन उसे कहीं नहीं मिलता। वो 30 साल की लंबी यात्रा पार कर वो अंततः उसी वृक्ष के पास पहुंचती है जहां वो दरवेश बैठा था, और वो देखती है वहां एक फल है और शायद यही स्वर्ग का फल है। और वो जाती है और देखती है वो दरवेश वहां पर बैठा है और उससे पूछती है क्या ये वही फल है। वो कहता है हाँ। और वो उससे पूछती है क्या वो तुम भी वही व्यक्ति हो जो मुझे 30 साल पहले मिले थे। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है अगर यही वो फल है और यही वो वृक्ष है और ये तुम ही वो व्यक्ति हो जो कि इस फल के संरक्षण कस्टोडियन हो, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था पर तुमने नहीं माना, क्योंकि इस झाड़ में 30 साल में एक ही बार फल लगता है। यदि मैंने तुम्हें तब बताया होता तो शायद तुम नहीं मानती और इसलिए तुम्हें भटकना पड़ा, क्योंकि ये वो अद्भुत वृक्ष है कि जिसमें 30 साल में केवल एक ही बार फल लगता है, और वो दिन आज का दिन है जिस दिन तुम आई हो। कहानी सूफी साहित्य में अलग अलग ढंग से और अलग अलग रीति से अलग अलग अर्थों में समाई बताई जाती है। तो वो एक वृक्ष था जिसमें 30 साल के बाद एक बार फल लगता था, और इस ईश्वरीय वृक्ष में कब फल लगता है? 5,000 वर्ष के बाद। और वो फल कौन है? वो फल कौन है? बाबा, वो फल कौन है? मैं हूं। कौन है वो फल? मैं ही हूं। तुम बच्चे ही वो फल हो। तो आज की मुरली में बाबा ने ये जो ईश्वरीय वृक्ष है, ये जो ईश्वरीय झाड़ है, ये जो जीनियोलॉजिकल ट्री, ये जो गॉडली ट्री, ये जो डिवाइन ट्री, ये जो वैरायटी वृक्ष, विविधतापूर्ण वृक्ष है, इस वृक्ष का वर्णन किया है, इस वृक्ष का विस्तार, इस वृक्ष के पत्ते, इस वृक्ष के फूल, इस वृक्ष का फल क्या है। और वो देखकर उसको क्या क्या होता है, उस वृक्ष पति को, ये वृक्ष है तो वो कौन है, वृक्ष पति, उसका वर्णन किया है। तो जो पहली मुरली है 1584 की, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बाबा किसको देख खुश हो रहे हैं, किसको देख खुश होते हैं, वो विस्तार को देख खुश होते हैं या सार को देख खुश होते हैं, सार को कि विस्तार को, दोनों को। तेरे फूलों से भी प्यार, सार से भी प्यार, तो विस्तार से भी प्यार। तो वो ईश्वरीय वृक्ष जब भी संसार में किसी वृक्ष को देखो तो दो चीजें याद आनी चाहिए, एक तो यह ईश्वरीय वृक्ष, संगम युग का ईश्वरीय वृक्ष, जिसमें ये ब्राह्मण परिवार ही एक वृक्ष है, इसमें फल है, फूल है, पत्ते है, विस्तार है, वैरायटी है, और इसका बीज वो वृक्ष पति है। एक तो ये याद आना चाहिए, और दूसरा कौन सा वृक्ष है जो याद आना चाहिए, जो ऊपर है वो उल्टा वृक्ष, अर्धमूलम मदश्शाकम अश्वत्थाम प्राहु रेवयम, गीता का 15वां अध्याय। हे अर्जुन सुन, मैं जिस वृक्ष की तुम्हें बात बता रहा हूं वो वृक्ष उल्टा है, जिसका बीज ऊपर है और विस्तार नीचे है, वो जो परम धाम है, तद्धामम परमम मम, उसमें ये वृक्ष है। तो वो बीज और वो सारी आत्मा है। तो संसार के जब भी किसी भी वृक्ष को, किसी भी दरख्त को देखो तो ये दो वृक्ष याद आए। तो इस वृक्ष की 6 विशेषताएं, 6 बातें आज मुरली में बाबा ने बताई, और 2 पार्टियों से मुलाकात, तो ऐसी 8 बातों की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहला, ये जो वृक्ष है इसका जो विस्तार है उसको देख बाबा खुश होते हैं, और ये जो विस्तार है ये कैसा है, क्या है ये विस्तार वृक्ष का, श्रृंगार है, वृक्ष का श्रृंगार क्या है, विस्तार, और वृक्ष का फल क्या है, हम बच्चे। ये सबसे पहली बात है। तो जितना ये वृक्ष बढ़ेगा उतना क्या होगा, इस वृक्ष का श्रृंगार होगा, और इस वृक्ष को बढ़ाने के निमित्त किसे बनना है, हमें बनना है। अर्थात जिन्होंने अब तक भगवान को नहीं जाना है, जिन्होंने अब तक भगवान को नहीं पहचाना है, उन आत्माओं तक परमात्मा संदेश फैलाना, अर्थात इस वृक्ष को बढ़ाना। क्योंकि वृक्ष तब अच्छा लगता है जब वो उसमें विस्तार हो। तो बाबा ने कहा ये वृक्ष का विस्तार ही इस वृक्ष का क्या है, श्रृंगार है, डेकोरेशन है। ये सजा हुआ तब लगता है जब उसका विस्तार होगा। तो इसमें से सीखना ये है कि जो वृक्ष है उसका विस्तार मुझे करना है, एक। दूसरी बात, जो विस्तार हो चुका है उसकी क्या करनी है, पालना करनी है, अर्थात आत्माओं को अपने सूक्ष्म संकल्पों के आधार से सकाश देनी, अर्थात आत्माओं की पालना करनी, किन आत्माओं की, जिन्होंने भगवान को जान लिया है, उन आत्माओं की, क्योंकि हम बात कर रहे ईश्वरीय वृक्ष की। तो जिन्होंने नहीं जाना वो इस वृक्ष का भाग बन जाए, और जो भाग है और जो विस्तार है और जो पत्ते हैं और जो फूल है, उनको क्या करना है, उनका आधार बनना है। आत्माओं की ज्ञान और योग से पालना करना, आत्माओं की अपने सूक्ष्म संकल्पों के वाइब्रेशंस के द्वारा पालना करनी है। तो ये काम हम सबको करना है। अमृत वेला, इस वृक्ष को भी मर्ज करना और उस वृक्ष को भी मर्ज करना, इस वृक्ष के नीचे भी बैठना और उस वृक्ष के नीचे भी बैठना, ये सीधा है, वो उल्टा है, तो दो वृक्ष हो गए। तो एक तो नीचे चले जाना और एक ऊपर, ऊपर जाकर आत्माओं का आह्वान कि हे देवी देवता धर्म की आत्माओं आ जाओ, भगवान आ चुका है। और इस वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करेंगे, सकाश, ताकि इस यज्ञ से आत्माएं बाहर ना जा पाए। किसी मुरली में वरदान था, क्या कर दो, इलेक्ट्रिक करंट, क्या कर दो, इलेक्ट्रिक करंट हो, ताकि कोई आत्मा इस यज्ञ से बाहर जाने की कोशिश करे तो क्या हो जाए, उसको शॉक, और अंदर फेंक दिया जाए। इधर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कड़ा पहरा लगा दो। किसका पहरा, वाइब्रेशंस का, ताकि इस किले से कोई बाहर न जा पाए। क्योंकि जब तक चेतना, जब तक आत्मा इस किले के अंदर है, कोई विकर्म नहीं होगा। जैसे ही इस किले के बाहर जाएगी, सारे विकर्म चालू होंगे, पर चिंतन चालू होगा, पर दर्शन चालू होगा, संसार की बातें, संसार का वर्णन, फेक न्यूज, इधर की बातें, उधर की बातें, यहां की बातें, वहां की बातें, व्यर्थ की बातें। इसलिए सबसे पहली बात है इस वृक्ष की, क्या, इस वृक्ष का विस्तार कैसा है और इस वृक्ष का श्रृंगार है, और फल कौन है, तुम फल हो इस वृक्ष के। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात इस वृक्ष की, इस यह वृक्ष वैरायटी है और इसकी रौनक है। वृक्ष कैसा है, वैरायटी है, विविधतापूर्ण है, इतना विस्तार है इस यज्ञ के, इस वृक्ष का, कि कितनी अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं यहां आई है, कितनी अलग अलग प्रांत से, जगह से, संस्कारों वाली, संस्कृति वाली आत्माएं यहां आई है, भाषाओं वाली आत्माएं यहां आई है। ऐसी आत्माएं आई है जिन्हें न हिंदी पता है न इंग्लिश पता है, फिर भी बाबा के ज्ञान में निश्चय पूर्वक चल रही है। अर्थात भगवान के बनने का आधार कोई संस्कृति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई देश नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ और है, और वो और क्या है, प्रेम। इसके लिए बाबा ने इस मुरली में कहा, तीन प्रकार के बच्चे बाप से मिलने आए हैं। कौन कौन से, एक प्रेम वाले, दूसरे ज्ञान वाले, और तीसरे समान वाले। तो हम कौन से हैं तीन में से, सोच के जवाब देना। प्रेम वाले अर्थात ज्ञान नहीं है, कौन से है, ज्ञान वाले। तो प्रेम रूखे सूखे, केवल ज्ञान, प्रेम और ज्ञान दोनों है, अर्थात समान नहीं। तो तीन में से हम कौन है, प्रेममय ज्ञान स्वरूप समान वाले। तो तीन प्रकार के बच्चे बाबा से मिलन बना रहे हैं। कुछ है जो प्रेम स्वरूप है, कुछ है जो ज्ञान स्वरूप है, और कुछ है वो समान है। जो प्रेम स्वरूप है वो स्वतः ही ज्ञान स्वरूप है, और जो ज्ञान स्वरूप है वो स्वतः ही प्रेम स्वरूप भी है, और जो दोनों है वो स्वतः ही समान भी है। इसलिए तीनों ही महान है, तीनों ही श्रेष्ठ है, और तीनों ही धारणा हमें अपने अंदर करनी है कि भगवान को केवल ज्ञान से नहीं पहचानना है, केवल तर्क से नहीं पहचानना है, क्या उसमें प्रेम हो। क्योंकि कितनी आत्माएं जैसे कहा वो भाषा को जानती ही नहीं है, फिर भी भगवान का बन गई, आ गई यहां पर। और कुछ है केवल तर्क से जानने वाली, बड़ी कम है, बहुत कम, जिन्हें ज्ञान की प्यास थी, जिन्हें सत्य की खोज थी, जो सत्य को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे, ऐसे बहुत कम है। परंतु फिर भी केवल ज्ञान से नहीं पहुंचा जा सकता, अनुभव भावना में होता है, तर्क में नहीं। अनुभव हृदय में होता है, मस्तिष्क में विचार है और तर्क है और लॉजिक है, और जो हृदय के भाव है वो इतने सूक्ष्म है कि मस्तिष्क में उसकी छाया तो पड़ती है, परंतु मस्तिष्क जब शब्दों का रूप धारण करता है तब उनमें बहुत अंतर है। भाव बहुत ऊंचे है, बहुत महान है, और अनुभूतियां भाव में होती है, शब्दों तक आते आते सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। इसके लिए जो परम अनुभूति है वो मौन है, जो ईश्वरीय अनुभूति है उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तेरा वो प्यार है बाबा, समझाया नहीं जा सकता है, बरस जाता है कहां से, नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। जो परम अनुभूति है अव्याख्य है, अकथनीय है, उसे वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय, वचनों का सामर्थ्य नहीं हृदय की अनुभूतियों को समझने का या वर्णन करने का। और अनुभूतियां मौन में होती है, केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता। जैसे एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, दार्शनिक, तर्कशास्त्री, लॉजिशियन, उसका यह मानना था कि संसार दुख है, और संसार में जो भी घटनाएं घटती है सब कुछ दुख ही दुख है, इसमें सुख हो ही नहीं सकता, हर चीज में दुख समाया हुआ है। और वो एक दिन बैठा है सुबह सुबह नाश्ता कर रहा है, उसकी पत्नी भी बैठी हुई है, और वो टोस्ट को घी बटर लगा रहा है, तो वो कहता है जब भी टोस्ट गिरती है हमेशा उसी बाजू में गिरती है जिस बाजू में बटर लगा होता है, ताकि पूरी टोस्ट खराब हो जाए, ये उसकी धारणा होती है। उसकी पत्नी कहती है ये जरूरी थोड़ी ना है हमेशा टोस्ट जब भी हाथ से गिरती है गलती से वो बटर की साइड में ही गिरेगी जहां पर मक्खन लगा हुआ है। वो कहता है नहीं, ऐसा ही नियम है। पत्नी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है ऐसा ही है। पत्नी कहती है करके देखो, चलो आज देख लेते हैं। तो वो टोस्ट को ऊपर फेंकता है और टोस्ट नीचे गिरती है, तो क्या होता है, इस बार मक्खन ऊपर रहता है, टोस्ट की जो बाजू है जिसमें मक्खन नहीं है वो नीचे। पत्नी कहती है देखी, देखा मैं हार जीत गई ना। वो कहती है ना तुम जीती ना तो मैं हारा, मक्खन गलत जगह पर लगा हुआ था, टोस्ट को जो बटर लगाया गया वो गलत साइड में लगाया गया था, वरना उसे तो नीचे ही गिरना था। इसके लिए तुम भी जीती नहीं और मैं भी हारा नहीं, अर्थात संसार दुखी है। ऐसा मन, ऐसा तर्कयुक्त मन, ऐसा लॉजिशियन माइंड भगवान के द्वार तक पहुंच जाए संभावनाएं कम है, जो हर चीज में केवल तर्क तर्क तर्क, रीजन रीजन रीजन, लॉजिक 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 को ही ढूंढता है। परमात्मा का द्वार तो उन आत्माओं के लिए जो भाव, दो चप्पू है, कौन से, कर्नाटक ग्रुप से मुलाकात, निर्माण और भावना, अति प्रेमी, अति स्नेही, अति भावना वाले बच्चे भगवान को बहुत प्रिय है, जिन्हें ज्ञान इतना समझ में नहीं आया है परंतु प्रेम बहुत ज्यादा है और वो प्रेम ही उन्हें भगवान का बना देता है। तो तीन प्रकार के बच्चे मिलने आए, ज्ञानी, प्रेम वाले और समान। तो हम कौन है? फिर से वही प्रश्न, हम कौन है तीनों में से? तीनों ही हैं। अब ठीक है, तो ये तीन बातें। तो हम थे इस वृक्ष की चर्चा कर रहे थे। पहली बात बताई थी कि ये वृक्ष को देखकर बाबा खुश होते हैं, ये वृक्ष का विस्तार, इस वृक्ष का श्रृंगार है और इस वृक्ष का जो फल है वो तुम बच्चे हो। दूसरी बात, इस वृक्ष का जो विस्तार है वो वैरायटी है, इस वृक्ष का जो विस्तार है वो रौनक वाला है और इस वृक्ष के जो फल है परंतु वो क्या है? शक्तिशाली है, शक्तिशाली फल। विस्तार कितना ही रौनक वाला हो, विस्तार को खाया नहीं जाता है, खाते किसको है? फल को, जो सार है, जो शक्तिशाली है। तो उस फल, जो शक्तिशाली है फल है, वो कौन है? हम है। आगे दिल्ली ग्रुप से मुलाकात है, उसमें बाबा ने कहा शक्तिशाली बनने की जिम्मेवारी किसकी है? तुम्हारी है, जिम्मेवारी के ताजधारी, स्वयं को शक्तिशाली बनाना। बाबा ने कहा यह फल बहुत शक्तिशाली है और वो फल मैं हूं, तो मुझे क्या बनना होगा? पावरफुल, शक्तिशाली। और अगर वृक्ष की भी बात की जाए तो वो कौन सा वृक्ष है जो बहुत ऊंचा जाता है? उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी विशेषता क्या होती है? जो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, उसकी जड़ें भी नीचे बहुत गहरी जाती है। तो यदि ऊंचाइयों को छूना है, यदि शक्तिशाली बनना है, तो बाहर के दिखावे से कुछ नहीं होगा। विस्तार रौनक वाला है, वैरायटी है, परंतु काम कहां करना पड़ेगा? अंतस्थ चेतना में काम करना पड़ेगा, अपने विचारों पर, संकल्पों पर, धारणाओं पर, सूक्ष्म मर्यादाओं पर, एक एक संकल्प पर काम करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा काम है, ताकि हमारी जड़ें कैसी हो जाए? बहुत गहरी। जिसकी अध्यात्म की जड़ें गहरी है, वही ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिसकी मन के संकल्पों की जड़ें बहुत गहरी है, एक एक संकल्प पर काम किया है, एक एक इमोशन पर, भावना पर काम किया है, एक एक स्मृति पर काम किया है कि अचानक ये विचार कहां से आ गया, ये तो था नहीं, जरूर कोई ना कोई उगम स्थान है। ये विचार जो बह रहे हैं, जो जो धाराएं बह रही है भावनाओं की, स्मृतियों की, ये जो कर्म है, इनका उगम स्थान कौन सा है? मनुष्य तीन तलों पर जीता है। सबसे बाहर का जो तल है वो है कर्म का तल, एक्शंस, डीड्स। इसके लिए किसी के कर्म को देखकर उसके व्यक्तित्व का पता नहीं लगाया जा सकता है और मनुष्य यही गलती करता है, किसी को कुछ करता हुआ देख लेता है और सोचता है इसका व्यक्तित्व ऐसा ही है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और एक्शंस को सेपरेट करने का अभ्यास करना है, क्योंकि कर्म सबसे बाहरी तल है। जैसे हम किसी को बहुत महान योगी समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, और अमृत वेला हमने उसको नींद करते हुए देख लिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके उसकी जो छवि थी वो मिट गई। हो सकता है वो बैठा तो है परंतु उसको बुखार है, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कर्म को देख लिया केवल। हो सकता है बहुत रात भर तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आकर बैठा हुआ है और हमने निष्कर्ष निकाल लिया, अनुमान कर लिया कि इतना बड़ा ज्ञानी है परंतु फिर भी सोता है। कहां है ज्ञान, कहां है योग? किसी के कर्म को देखकर सीधा उसकी उसके व्यक्तित्व का निष्कर्ष नहीं निकालना है। सबसे पहला बाहरी तल है कर्म, कर्म के अंदर है उसके अंदर का विचार, वो जो सोच रहा है, और उसके भी अंदर का एक तीसरा तल है, वो है भावनाएं, जो कि सबसे गहरा तल है। बाहर से जो कर्म हो रहे हैं बहुत छोटे हैं, एकदम बाहरी है, उसका बीज अंदर है भावनाएं। और एक चौथा तल भी है जहां पर बैठकर ये तीनों तलों को देखना है, वो कौन सा? साक्षी का तल, वो है साक्षी का तल। मैं आत्मा देख रही हूं, भावनाओं को, उसके आगे विचार और उसके आगे कर्म। जो काम करना है वो साक्षी के तल पर करना है, जो साधना करनी है वो साक्षी की साधना करनी है। ये जो विचार है ये भी मैं नहीं, ये जो भावनाएं है ये भी मैं नहीं, ये जो कर्म है वो भी मैं नहीं, इन तीनों का जो साक्षी है वो मैं हूं। और जब इस तल पर काम किया जाता है तो जड़े कैसी होती है? गहरी होती है। इसके लिए बार बार मुरलियों में आता है, जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है सब कुछ साक्षी होकर देखो। जिसकी साक्षी की साधना सबसे ज्यादा है उसका मन सबसे शक्तिशाली और अनडिस्टर्ब्ड है। अचल, अविचल। तो ये थी दूसरी बात इस वृक्ष की। अब तीसरी बात, विस्तार को देखकर सब खुश होते। बाबा ने लौकिक का उदाहरण दिया है, कोई एक पेड़ है बहुत बड़ा है उसको देखकर खुश होते हैं, परंतु शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना पड़ता है? फल को खाना पड़ता है। शुभ आश, बाबा ने कहा, शक्तिशाली बनने के लिए क्या चाहिए? फल खाने की शुभ आश। विस्तार कभी कभी भ्रम उत्पन्न करता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए। सेवाओं का विस्तार शायद कभी कभी ये भ्रम उत्पन्न करता है कि हमने जान लिया, समझ लिया, बहुत सारे पुण्य कर लिए, बहुत कुछ कर लिया। विस्तार में भ्रम है, परंतु शक्ति कहां से मिलती है? उस फल से, खाने से। और जैसे कहा, शक्तिशाली बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड। एक व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है संसार से, इतना दुखी हो जाता है, सोचता है संसार को छोड़ दूं, खुदकुशी कर लूं, जंगल में चला जाता है, भटकते रहता है यहां वहां, मिल जाए कोई सरोवर, कोई तालाब, कोई नदी, कोई समुंदर और कूद पड़ू। और उसे एक साधु मिलता है, एक सन्यासी, एक तपस्वी। वो साधु कहता है, क्या हुआ? वो कहता है, दुखी हूं, जीवन से दुखी हूं, जीवन में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया, जो कुछ किया सब में असफलता मिली, जो जो कार्य किए, जो जो क्षेत्र में मैं गया, हर जगह पर असफलता हाथ आई, मैं क्या करूं, संसार दुख है। वो योगी उस व्यक्ति को कहता है, वो देखो सामने दो झाड़ खड़े हैं, एक तो बांस का वृक्ष है, बाम्बू ट्री, और दूसरा कोई साधारण सा वृक्ष है। वो कहता है कि जब मैंने बीज बोया था इन दोनों झाड़ों का, तो पहला जो वृक्ष था साधारण, उसमें तुरंत वो बढ़ गया, तुरंत फल फूल आ गए, परंतु ये जो दूसरा झाड़ था बांस का झाड़, बाम्बू, उसमें कुछ भी नहीं आया। फिर भी मैं पानी डालते गया, खत डालते गया, धूप आती रही, 4 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, जरा भी अंकुरित नहीं हुआ, सैपलिंग लगाई नहीं, और कहीं 4 साल के बाद थोड़ा सा पौधा निकला, और 6 मास के अंदर आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया, 100 फीट ऊंचा। तो ये क्या हुआ? क्योंकि वो 4 साल तक क्या कर रहा था? बांबू का नीचे अपनी जड़ें जमा रहा था, क्योंकि उसे लंबा समय टिकना था और उसे बहुत ऊंचे ऊंचा उठना था। तो जिसे भी ऊंचा उठना है और जिसे भी लंबा जाना है, उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी अंदर की जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, तो ही शक्तिशाली बनेंगे, नहीं तो उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे जीवन के दुखों से। बाइबल में लिखा है कि जो मेरी बातों को सुनता है उसने अपना घर कहां बनाया है? चट्टान पर बनाया हुआ है। और जो मेरी बातों को नहीं बांधता उसने अपना घर बालू पर बनाया गया। एंड द फ्लड कम्स, एंड द रेन कम्स, एंड द विंड ब्लोज, फिर भी जिसने चट्टान पर घर बनाया होगा, अर्थात मेरी बातों को ग्रहण किया होगा, उसका घर ढहेगा नहीं। इसके लिए काम किस पर करना है? अंडरग्राउंड, भीतर, विचारों पर, कर्म, विचार, भावना, 3 तल, साक्षी में बैठकर देखते रहना तीनों को। तो वो जो कर्म सबसे सतही है, सुपरफिशियल है, वो अपने आप प्रभावित होंगे। वास्तव में जो हम कर्म कर रहे हैं वो परिणाम है किसी और चीज का जो अंदर हो रही है, किसी और चीज का जो उससे भी अंदर हो रही है, संकल्पों से भी गहरे भावनाएं हैं। फिर उसके बाद में चौथी बात, ये जो वृक्ष है और ये जो विस्तार है, विस्तार और सार दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। विस्तार की विशेषता अपनी, सार की विशेषता अपनी। क्या विशेषता होगी? ये मुरली में है नहीं, क्या विशेषता होगी? और विस्तार में क्या है और सार में क्या है? विस्तार क्या करता है और सार क्या करता है? सार अर्थात फल, विस्तार अर्थात पत्ते। क्या अंतर? बाबा ने कहा दोनों की विशेषता अपनी अपनी है। वो छाया देता है और ये शक्ति और विस्तार से उमंग उत्साह आता है। ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो ऐसा विस्तार, ऐसा संगठन देखकर ही आए हैं। इतनी सारी आत्माएं आ गई तो हम भी चलो, कुछ तो होगा। तो विस्तार को देखकर आकर्षण भी होता है, देखने जाते हैं विस्तार को। फल की अपनी विशेषता, विस्तार की अपनी विशेषता। और एक अगली बात, पांचवी, परसेंटेज भी दोनों की अपनी अपनी है। भवाने का फल की परसेंटेज अपनी और विस्तार की परसेंटेज अपनी। और लास्ट बात छठवी, बाबा को दोनों से ही प्यार है, विस्तार से भी और सार से भी। ज्यादा किससे है? सार से कि विस्तार से? विस्तार अर्थात जो आत्माएं अभी भी जुड़ रही है, जो आत्माएं अभी भी आ रही है, विस्तार अर्थात अभी अभी आने वाली, और सार अर्थात जो लंबे समय से है, पहले से है। तो बाबा ने कहा दोनों से प्यार है, दोनों से प्यार है उसको, और इसलिए वो दोनों से मिलने आता है। और इसलिए मिलने के लिए, आने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? साकार रूप धारण करना पड़ता है। यही उसके प्यार की निशानी है। जैसे भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया, कौन सा? भक्ति मार्ग। जैसे भक्तों की इच्छा बाप पूर्ण करते हैं, वैसे यहां भी क्या करते हैं? क्या बच्चों की भी अवश्य करेंगे। और आत्मा की सबसे गहरे तल में एक इच्छा है मिलन की। द डीपेस्ट डिजायर जो है आत्मा की, वो क्या है? मिलन। परंतु एक गड़बड़ हो गई द्वापर से। ये मिलन की जो इच्छा है वो है आत्मा की परमात्मा से मिलन की, परंतु न आत्मा का ख्याल था न परमात्मा का। इसके लिए मिलन को देह के तल पर ढूंढा और काम का विस्तार हुआ। उस देह के मिलन को सर्वोच्च मिलन माना और विकारों में व्यक्ति डूबता गया, इतना डूबता गया कि उस मिलन से ना तो कभी तृप्ति हुई और ही दुखी होता गया, दुखी होता गया, बेचैन होता गया, फंसता गया गर्त में। इसलिए बाप जब इस संसार में आते हैं एक ही काम करते हैं, कौन सा? पति से पावन बनाने का। काम महाशत्रु है, ऐसा कोई कह दे, ये मासी का घर नहीं है, केवल बाप ही कह सकता है। कुछ दिन पहले मुरलियों में था, 4 दिन पहले, वो केवल एक ही काम करने आता है, पतित को पावन बनाने। इस काम ने ही सबसे सबका बेड़ा गर्त किया है। क्रोध ने नहीं किया, लोभ ने नहीं किया, मोह ने नहीं किया, अहंकार ने नहीं किया, काम ने कर दिया। इसके लिए इस यज्ञ का मूल फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। और बिना पवित्रता के इस ज्ञान को समझा नहीं जा सकता, बिना पवित्रता के इस ज्ञान को धारण नहीं किया जा सकता। बिना पवित्रता के जो भी सेवाएं हो रही है सब कुछ व्यर्थ है। यदि मन में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, दैहिक आकर्षण है और दैहिक इच्छाएं, तो जो कुछ बाहर हो रहा है उसमें सार नहीं होगा। इसके लिए बाबा कहते हैं सिवाएं छोड़ दो पर आंतरिक पवित्रता और खुशी ना जाए, यहां तक भी बोला है। तो मिस्तार से भी प्यार है तो सार से भी प्यार है। ऐसी मिलती जुलती ये 6 बातें इस ईश्वरीय वृक्ष की बाबा ने कही है। अब आपके लिए काम दे रहे होमवर्क कि ये जो वृक्ष है या ये जो ब्राह्मण परिवार है इसकी क्या क्या विशेषता है, वो सबको लिखना है बाद में। इस ब्राह्मण परिवार की या ईश्वरीय वृक्ष की 21 विशेषता है, जो मुरलियों में आई है वो नहीं, वो छोड़कर दूसरी विशेषता है क्या क्या है उसके बारे में चिंतन करना है, लिखना है। अभी भी मुरलियों में था, एकांत में जाओ और चिंतन करो। जैसे वो पादरी क्या करते, एकांत में जाते हैं और माला फेरते हैं, तुम भी छत पे जाओ और चिंतन करो, एकांत में जाओ और चिंतन करो। ऐसा एकांत हो कि जहां पर कोई भी मनुष्य दिखाई ना दे, पर ध्यान से जाना क्योंकि भालू दिखाई दे सकता है। छत पर जाओ और चिंतन करो, पढ़ो कम परंतु चिंतन न देखो, सुनो कम परंतु चिंतन न देखो। जो सुन रहे हो उसको अंदर आत्मसात अंगीकार करने के लिए चिंतन की आवश्यकता है, चिंतन की धारा को तेज करना है। फिर 3 प्रकार के बच्चों का वर्णन किया और एक बड़ा ही पावरफुल बातें आगे आई है। दिल्ली ग्रुप से मुलाकात, क्या कहा दिल्ली ग्रुप को, स्थापना का फाउंडेशन है तो राज्य का भी फाउंडेशन है, तो दिल्ली वालों को क्या करना पड़ेगा, स्वयं को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी है। अब ये बड़ा प्रश्न है कि अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाए, क्या किया जाए, आप बताएंगे क्या करें कि जिससे हम शक्तिशाली बन जाए। बाहुबल नहीं, बुद्धि बल नहीं, आत्मबल। क्या करें जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाए, पावरफुल बन जाए? चिंतन। एक तो बोली दिया है चिंतन, बिना चिंतन के आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। एक और योग को पावरफुल करो, योग का चार्ट बढ़ाओ, जितना ज्यादा योग शक्तिशाली हो। योग में सुनना बंद हो जाता है, केवल चिंतन करते रहना ही योग नहीं है, ज्ञान का चिंतन भी योग नहीं है, योग अलग चीज है। और शरीर ही भूल जाए, अभी भी मुरलियों में आया था, शरीर भूल जाए, आवाज भूल जाए, सुनना भूल जाए, देह का भान भूल जाए, आत्मा अशरीरी होकर अशरीरी बाप में समा जाए। तो दूसरा है योग, तीसरा धारणाएं, बाबा से बातें करने से आत्मा शक्तिशाली होती है। क्या बातें करेंगे? सब ठीक तो चल रहा है परमधाम में, तो भगवान से बातें करना, बार बार उसका आह्वान करना दिनचर्या में, बार बार उससे बातें करना, बार बार उसको अपने दिल का हाल सुनाना, बार बार उसको मैसेज करना, जैसे दुनिया में मैसेज किया जाता है ना, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहते हैं, स्टेटस, भगवान के पास ट्विटर नहीं है परंतु उसको फॉलो करो, भगवान के पास फेसबुक नहीं है परंतु वही सबसे अच्छा मित्र है, फ्रेंड है, भगवान के पास व्हाट्सएप नहीं है परंतु निरंतर ऑनलाइन कौन है, वही है हमेशा। और क्या करो शक्तिशाली बनने के लिए? एकांत में जाओ। और क्या करो? वापस में ज्ञान की चर्चा करो तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और क्या करो? पावरफुल अमृत वेला करो। और क्या करो? कितने बजे अमृत वेला करो? अभी अभी मुरली में टाइम आया था। एक दो तीन चार और एक बड़े महान योगी, मुरलियों में आता है कि भारत के योगी विदेश गए और उन्होंने ज्ञान योग सिखाया उधर, एक ऐसे ही योगी थे एकनाथ ईश्वरन, 1960s और 70s में अमेरिका गए थे, उनकी एक उन्होंने मेडिटेशन की, बड़े काम किए मेडिटेशन पर, उनकी एक किताब है मेडिटेशन, उसमें एक वर्णन है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मन जो है हाथी की सूंड की तरह है। जैसे कोई कोई जगह पर, किसी किसी शहर में जहां बहुत मंदिर होते हैं, हाथी की वो निकलता है प्रोसेशन, यात्रा निकलती है, और मंदिरों के जो रास्ते होते हैं बहुत छोटे छोटे रास्ते होते हैं, गलियों में मंदिर होते हैं, तो जब वो गलियों से गुजरता है हाथी, जो जो दुकानें होती है कहीं से केले पकड़ के लेता है और फेंकता है, कहीं से नारियल लेता है अपनी सूंड में और फेंकता है, और जितने रास्ते छोटे छोटे संकरे होते हैं उतना ही वो और उत्पात मचाता है। तो मनुष्य का मन भी कैसा है? उस हाथी की सूंड की तरह है, इधर जाता है उधर जाता है, आराम से नहीं जाता है वो मंदिर के पास, बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो जो महावत होता है, जो एलिफेंट ट्रेनर होता है, वो एक काम कर देता है, कौन सा क्या करता है, हाथी सूंड कभी इधर तो कभी इसको उठा के पटक फेंक देता है, कभी इंसान को भी पटक लेता है, तो क्या किया जाता है, टेक्निक क्या करता है वो एलिफेंट ट्रेनर? आंखों की पट्टी तो नहीं, वो तो घोड़ों को की जाती है। आंखों की पट्टी तो घोड़ों को लगाई जाती है, हाथी को क्या करता है? हाथी को क्या करता है? श्रृंगार करने से वो अपना उत्पाती स्वभाव थोड़ी ना बदलेगा। वो महावत एलिफेंट ट्रेनर क्या करता है, एक बांबू का स्टिक, एक बांस का लकड़ा उसके सूंड में डाल देता है, और वो बड़ा ही अकड़ के और शान से चलता है, फिर अभी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसकी सूंड में क्या है, वो लकड़ी है श्रीमत्। मन रूपी इस हाथी को क्या दे देना? श्रीमत्, एक लाठी दे देना इसको, अब वो इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं तो इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहता है उपद्रव, उसका सारा फोकस अब कहां होता है, उस बांस की लकड़ी पर। तो शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली श्रीमत की धारणा, अनपैकिंग श्रीमत, श्रीमत को समझना है क्या है, और पहले तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना है, शायद अब तक हमने जो समझा है वो पूरा नहीं समझा है, पर अब समझेंगे। तो ये इस मुरली से बड़ी सूक्ष्म बात बाबा ने कही है कि शक्तिशाली बनने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, कोई दूसरा मुझे शक्तिशाली नहीं बना सकता। हाँ, मदद जरूर कर सकते, कोई क्लास, कोई प्रवचन, कोई मुरली, कोई अव्यक्त वाणी, किसी की एडवाइस, परंतु शक्तिशाली बनने का कार्य मुझे अपना स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं की जड़ों को क्या करना पड़ेगा, नीचे और नीचे और नीचे, कर्म से विचार और विचार से भाव, उन भावनाओं को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो ये कार्य करना है। तो एक तो ये दिल्ली ग्रुप से मुलाकात थी और फिर था कर्नाटक ग्रुप से मुलाकात। दो चप्पू कर्नाटक की नाव के या हमारे जीवन की नाव के, कौन कौन से? एक तो भावना और दूसरा निर्माण। निर्माण का आधार भी भावना या श्रद्धा। भाव ने कहा या दो प्रकार के लोग हैं, एक तो भावनावादी, अति प्रेमी, अति स्नेही, और दूसरे एजुकेटेड है, नामी ग्रामी, वो भी है। परंतु मुख्य जो बात उठानी है धारणा की, वो है हम में दो बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान 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 और ज्ञान और आंसू सूख जाए। आंसू बहाने चाहिए नहीं बहाने चाहिए? कितने? बहुत, पर निकलते तो नहीं। कभी कभी प्रेम के आंसू से उसे पुकारो, झूमते हुए उसे पुकारो, गाकर उसे पुकारो, झूम कर गाकर। इस संसार में मनुष्य के अतिरिक्त कुछ भी है जो दुखी है? इस संसार को देखो, सब जगह उत्सव चल रहा है। इस प्रकृति को देखो, कैसी नदी, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, झाड़, वृक्ष, कलकल निनाद करते झरने, समुद्र, सब खुश है, सब उत्सव में है, और मनुष्य दुखी है। तो उसे पुकारना, उसे बुलाना, जीवन को उत्सव बना देना। उत्सव से पुकारो, प्रेम से पुकारो, गा के पुकारो, झूम कर पुकारो, आंसुओं से पुकारो। ये भावना का मार्ग है, प्रेम पथ है ये, प्रेम का मार्ग। तो एक तरफ है भावनाएं और दूसरी तरफ है निर्माण। और जहां भावनाएं होगी वहां नम्रता का भाव आएगा, वहां वो अकड़। अकड़ तो कहां से आती है? तर्क से। अकड़ तो कहां से आती है? अधिक ज्ञान से। हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, पहले सुनो, हम बताएंगे तुमको भगवान कौन है। आत्मा परमात्मा हमें पता है, तुम्हें नहीं पता। हम बताएंगे सृष्टि चक्र 5000 साल का है। कितना अहंकार है, उस कोर्स कराने में भी अहंकार है। उसका कल्याण हो जाए ये भावना कम, पर मैं इसका कोर्स करा रहा हूं ये भावना थोड़ी ज्यादा है। वो अभी अभी घूम के आया है, पीस पार्क में उसे सारा ज्ञान समझा दिया, पर अब यहां पर आया तो मैं इसे पिलाऊंगा ज्ञान, पकड़ के छूटना नहीं पाए मेरे पास। वो कहते हैं मुझे जाना है, गाड़ी का बाहर खड़ी है, मुझे प्रजा बनानी है। तुम्हारी गाड़ी जाएगी तब जाएगी, जब तक मैं रहम नहीं करूंगा इसके ऊपर, छोड़ूंगा नहीं। पूरा ज्ञान सुनाना है, एक घंटे में आखिरी ब्रह्मचर्य तक सुनाकर छोड़ना। बेचारा दुखी होकर जाता है, ऐसी ऊंची ऊंची बातें उसको सुना देते हैं, क्योंकि मुझे मेरी प्रजा का सवाल है। बड़ी बेरहमी से रहम करते हैं ब्राह्मण कोई कोई, ट्रेन में तो ऐसा रहम करते हैं कि बात मत पूछो। तो भावना और निर्माण ऐसे कैसे, भावना और निर्माण वाले बच्चों को ऐसे ऐसे विस्त, ऐसे शक्तिशाली शक्तिशाली स्थिति वाले बच्चों को, ऐसे शक्तिशाली फल स्वरूप बच्चों को, ऐसे सार स्वरूप बच्चों को, और दूसरों को भी सार स्वरूप स्थिति में स्थित कराने वाले बच्चों को ऐसे ऐसे श्रृंगार तो विस्तार है, ऐसे ऐसे साक्षी तो हमने बताया, मुरली में नहीं है, ऐसे अरे बोलो ना, वो भाव विभोर हो गया, ऐसे इतनी बड़ी मुरली है, ऐसे स्वयं को शक्तिशाली बनाने वाले बच्चों को, जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले बच्चों को, ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को ऐसे भगवान से किस रीति से मिलन मनाने वाले, प्रेम से, ज्ञान से और समान स्वरूप से मिलन मनाने वाले बच्चों को ऐसे, वो हो गया ऐसे ऐसे आधार मूर्त उद्धार मूर्त, वो आगे की मुरली में है, ऐसे 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 डैश 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 वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।